السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے آپ لوگ؟ کل کے پارے سے کیا سیکھا؟ کیا تھیم تھا ہمارے پارے کا؟ توبہ. توبہ کیا ہوتی ہے؟ پلٹنا. اور استغفار کیا ہوتی ہے؟ ہم نے جو اس میں توبہ کی بات کی تھی، تھوڑا سا اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں کہ توبہ کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے ہماری اپنی زندگیوں میں اس کا اثر ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جتنا دل میں شرمندگی کا احساس ہوگا، اتنی زیادہ ہماری زندگی میں توبہ ہوگی. پورے پارے میں سے ہم نے توبہ کے نکات دیکھے، کس طریقے سے مختلف لوگوں نے کچھ کاموں میں تو فوراً ہی بھڑ کے لبیک کہہ دیا اور کچھ نے تو تھوڑی دیر کی، گھر جا کر محاسبہ کرتے ہیں. کس کس کو بعد میں یہ باتیں یاد آتی ہیں؟ دیکھیے، اپنے لیے سیکھیں، جہنم کی آگ کتنی شدید ہوگی یہاں سے اندازہ لگا لیجئے. آج اگر بجلی چلی جائے یا پنکھے بند کر دیے جائیں تو اتنے بڑے ہال میں ہمیں ایسے لگے گا کہ ہم گھٹن سے مر رہے ہیں. وہ قبر تو بہت چھوٹی سی ہوگی. تو جس کو اپنی آخرت اور اپنی موت یاد ہے، وہ توبہ ضرور یاد رکھے گا. توبہ کیا ہے؟ ندامت اور شرمندگی کا نام ہے. محاسبے کا نقطہ کیا ہے؟ خود سے پوچھئے. یہ کاپیوں پہ لکھنے سے زیادہ دل پہ لکھنے والی باتیں ہیں. میں گناہوں کو کیسے لیتی ہوں؟ ہلکا لیتی ہوں، بس ٹھیک ہے ہو گئے سب کرتے ہیں یہ کہتی ہوں، یا پھر گناہوں کے ساتھ میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں کہ یہ میرے سے کیا ہو گیا؟ کیا حقیقت میں میں اپنے گناہوں کو اپنے لیے وبال تو نہیں بنا رہی کہ کل قیامت کے دن یہ گناہ مجھے اللہ کے سامنے شرمسار کر دیں؟ پھر وہ اسباب جو چھوٹے گناہوں کو بڑا کر دیتے ہیں، سوچا تھا گھر جا کر اس پہ کون سے تھے؟ ذرا دہلا لیتے ہیں. صغیرہ گناہوں پہ ہٹ دھرمی کی جائے، صغیرہ گناہوں کو عادت بنا لینا، پھر اسی طرح گناہوں کو حقیر جاننا. تیسرا سبب کیا تھا؟ انسان گناہ کر کے خوش ہو اور اسے غنیمت بھی سمجھے. نیکسٹ، جب وہ گناہ کرے تو اللہ کی طرف سے ملنے والی مہلت کو رحمت سمجھنے لگے. نیکسٹ، وہ اپنا گناہ خود ظاہر کر دے. نیکسٹ، یعنی گناہ کرنے والا صاحب علم ہو یا اس کی کسی بھی طرح سے علم کی شہرت ہو اور لوگ اس کی اتباع کریں اور اسے گناہ کرتا دیکھ کر دلیر ہو جائیں. کتنی جرأت کی بات ہے. کیا توبہ کی شرائط ہیں؟ نمبر ایک، توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. نیکسٹ، خود کو کثرت سے ان کاموں میں لگائیں جن سے، یعنی خود کو کثرت سے ان کاموں میں لگائیں جن سے گناہ دھل جائیں. پھر نیکسٹ، کے گناہوں کو اپنے اور اللہ کے بیچ میں ایک پردہ سمجھیں. نیکسٹ، جو جسم گناہوں میں کھپایا تھا اب اس کو نیکیوں میں کھپائیں. تو ندامت سے بات شروع ہو کر ان ساری چیزوں پہ لے جاتی ہے. اور اس طرح سے آپ دیکھیے کہ نیکسٹ سلائیڈ میں پھر محاسبے کے نقطے ہیں. کیا میں اللہ کے راستے میں بھوک اور پیاس برداشت کرتی ہوں؟ اللہ کے راستے میں میرے قدم چلے. آپ دیکھیے کہ جب آپ علم کے لیے نکلتے ہیں نا، اس وقت ان باتوں کو سوچا کریں. پتہ نہیں میرے کس کس گناہ کو اللہ نے معاف کرنا، کیا کیا میرا گناہ دھلے گا، اور کس کس چیز سے میں اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے قریب کروں گی. تو پھر گرمی، مشکل، یہ لفظ آپ کی ڈکشنریوں سے نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کیا اللہ کے راستے میں میں نے مشکلات برداشت کی؟ آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ کبھی آئی نہیں، محسوس ہی نہیں ہوئی. جیسے بے ہوش شخص کو درد کا احساس نہیں ہوتا نا، اسی طرح اگر آپ اس علم کو اپنا مشن بنا لیں تو آپ کو اس کے رستے کی کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی اپس اینڈ ڈاؤن بڑا نہیں لگے گا. آپ کہیں گے کبھی آئی نہیں. لوگ کہتے ہیں آئی تھی، آپ کہیں گے اچھا پھر میں تو ہوش میں کوئی نہیں تھی. یہ احساس آپ کے اندر آ جائے گا نا تو آپ ہمیشہ مسکرائیں گے. دکھ، سکھ، گرمی، سردی، پھر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ہے کہ نہیں ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ میرے گناہ دھل رہے ہیں. اور یاد رکھیے، روٹی کچی نہیں کھائی جاتی نا، پکا کے کھاتے ہیں. کچی روٹی اگر پکے نا कुर्बानी ना दे आग पे जलने की, तो मेरे आपके पेट की भूख बुझेगी? एक रोटी आपके मेरे लिए चूल्हे पे जलती है, फिर हम उसको खाते हैं। सोचें ज़रा इस जुमले को, गौर करें, इसमें से अपने लिए अमल की बातें लाएं। हमने अपने इस जिस्म को आग से बचाने के लिए कितनी गर्मी सहनी है। फिर इसके बाद देखिए सूरज यूनुस, जब माशरे में हक आए तो लोग क्यों होते हैं? क्योंकि हक अक्सर की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ होता है। चलिए, इस सूरह में बताया जा रहा है कि देखो ये कितनी अगली आयात में इस ज़ात का तारुफ़ बयान किया जा रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह से आप देखिए कि आयात में हमने जो मुहासबे की बातें देखी थी, कौम यूनुस की ख़ास बात क्या थी? सब बोले, कौम यूनुस की ख़ास बात क्या थी? नेक्स्ट, वाहिद कौम है जिस पर अजाब के असरात बने लेकिन अजाब नहीं आया, वजह क्या बनी? कोई एक बताए जी, आप बताइए। तौबा की थी और अल्लाह ने अपने नबी को सच्चा करार देना था, इसलिए अभी अजाब का तो वक्त ही नहीं आया था, सिर्फ ये एक उनके लिए रिमाइंडर था। चलिए, इस्तिग़फ़ार क्या है? मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर दे। तौबा क्या है? अब मैं तेरी तरफ पलट आया। इस्तिग़फ़ार का मतलब है कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी के पिछले गुनाहों को ढांप ले, यानी इनको छुपा दे। तौबा का मतलब क्या है? पलट आना। गुनाह की वजह से बंदा अल्लाह से दूर हो चुका होता है, अल्लाह नाराज़ हो चुका होता है हमसे, हमें पता भी नहीं होता। तो अल्लाह ताला को हम कहते हैं, अल्लाह ताला हम वापस आपकी तरफ आ रहे हैं। तो सूरत हूद में किसकी बात है? सूरत हूद में इस्तिग़फ़ार की बात है। ठीक है, फिर इसी तरह से अपना जायज़ा लेते हैं। जब मैं तौबा करती हूँ, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ती हूँ, तो क्या यह सिर्फ़ ज़बानी कलामी तौबा तो नहीं होती? आप में से कितने लोग हैं जो शऊर के साथ इस्तिग़फ़ार करते हैं? नबी सल्लम कितनी दफ़ा करते थे? 100 बार। हमें कितनी करनी चाहिए? बेहिसाब करनी चाहिए, क्योंकि हमारे गुनाह बेहिसाब हैं। जब मैं तौबा और इस्तिग़फ़ार करती हूँ, तो क्या सिर्फ़ ज़ुबानी तौबा तो नहीं होती? आज के बाद सोचिएगा। फिर उसके बाद मुहासबे के नुक्ते जो आपके पास मौजूद हैं, इसको आप देखिएगा, लेकिन इस पारे के जेम्स नोट कीजिए, क्योंकि आपने मैंने इसमें से अपने लिए जेम्स लेकर इसके ऊपर फिर इंशाल्लाह एक्टिविटीज़ भी बनानी है। तो पहला जेम क्या है 11वें पारे का? दौलत अल्लाह की राह में ख़र्च ना करना, या फिर करना तो ना खुशी से करना, दोनों अमल दिल में निफाक पैदा करते हैं, अल्लाह हमें इससे बचा दे। नेकी छूट जाए तो सज़ा में ऐसी नेकी करें जो मुश्किल लगती हो। मसलन अगर नफली रोज़े रखने मुश्किल लगते हैं तो रोज़ा रखिए, पैसे देने मुश्किल लगते हैं तो सदका कीजिए, ताकि चोट पड़े नफ्स मरे। फिर दीनी इमारतें इखलास पे मबनी हो, ना के नाम और मसलक पे। जन्नत की कीमत क्या है? मेरा माल मेरी जान। सोचा था इस आयत को, गौर व फिक्र किया करें, आदत डालें। ये 2-2.5 घंटे इधर बैठ जाना काफ़ी नहीं होगा, इसके बाद भी ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी। कल अगले दिन आने तक आप इसके ऊपर जितना गौर व फिक्र कर चुके होंगे, इंशाल्लाह अगले दिन आप उससे उतना अच्छा लेंगे। चलिए, अगली याद रखने की बात क्या है? ईमान और मार्फत का नूर तौबा की असल है। क्या मतलब है इसका? अच्छा, कोई जुमला होना ऐसे ना बोल दिया करें, सोचे ये क्या कहा मैंने, क्या सुना है मैंने। ईमान, ईमान क्या होता है? अच्छा, अल्लाह को मानना, अमन में आना। अच्छा, मार्फत क्या होती है? अरफा से अल्लाह को पहचानना, मार्फत इलाही, यानी अल्लाह के वजूद और उसकी बढ़ाई का एहसास हो गया। अच्छा, ईमान और मार्फत का नूर जितना बढ़ता जाएगा, तौबा करनी उतनी आसान हो जाएगी। आज की ज़रूरत क्या है? इल्मी जिहाद, इल्म का झंडा लेकर खड़े हो जाइए, दुनिया में जहालत बहुत है। फिर दुआ कहती सब मिलकर पढ़िए, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। कितनी बार? कब? सुबह और शाम। शाम से क्या मुराद है? असर के बाद कभी भी, ठीक है। और सुबह से क्या मुराद है? सुबह की नमाज के करीब, उससे पहले या उसके बाद कभी भी, ठीक है। फ़ायदा क्या होगा? दुनिया और आखरत के सारे गम दूर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अगला नुक्ता नोट करें, सिफारिश उसकी जिसकी अल्लाह इजाज़त दे। फिर एक और जेम नोट करें, जैसी करनी वैसी भरनी। नेक्स्ट, हक की तासीर दिल पे जल्दी असर होता है, यानी हक बहुत मौसर होता है। जितना ज़्यादा कोई हक पेश करेगा ना, और सच्ची नीयत से करेगा और ख़ुद भी उस पर अमल की कोशिश करेगा, उतनी ज़्यादा उसकी बात में तासीर होगी। लोग बहुत सारी बातें कहते सुनते हैं, उनका ये ख्याल होता है कि पता नहीं मीठी मीठी बातें कैसे होती हैं, और मीठी बातें और फला फला। याद रखिए कि अपने अंदर सच ले आइए, जितना ज़्यादा सच आपके अंदर आता जाएगा उतनी आपकी बात में तासीर आती जाएगी। चलिए नेक्स्ट, इस्तकामत क्या है? जम जाएँ तो अल्लाह की मदद आएगी। और इल्म क्या है? अल्लाह इल्म का नूर कल्ब आसी को नहीं देता। ये आसी कौन होता है? गुनाहगार, इसियान से, यानी गुनाहगार दिल से अल्लाह इल्म की मोहब्बत छीन लेते हैं। अगर आप लोग आ रहे हैं ना आजकल, तो खुश हों कि अल्लाह ताला आपके दिल से इंशाअल्लाह ताला इल्म की मोहब्बत को बढ़ाकर आपको कई चीज़ों में आगे लेकर जाएंगे। और अगर दिल ही नहीं लग रहा क्लास में, हाय गर्मी बड़ी, सर्दी बड़ी, हाय दूर बड़ा, करीब बहुत, अब क्या फ़ायदा, अब क्या फ़ायदा, तो उसका इलाज क्या है? अपना कोई गुनाह याद करें हम सब, कि जिस गुनाह ने मुझे आज क्लास में आने से रोक दिया। कभी भी घर बैठने को दिल करे ना, तो ये जुमला याद रख लीजिएगा, उम्मीद की जाती है कि उससे बहुत फ़ायदा होगा। फिर आगे आप देखिए कि अहम नुक्ता क्या था। खालिस तौबा ये है कि इंसान अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करे, गुनाह करना छोड़ दे, आइंदा इसे ना करने का अज़्म करे, और अपने पिछले गुनाहों पे शर्मिंदगी महसूस करे, शर्मसारी महसूस करे। अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक भी अता फरमाए। फिर इसी तरह से अगर इसका ताल्लुक़ हुकुकुले बात से हो, यानी किसी का हक छीना है या किसी के हक तलफी की है, तो इसका हक अदा करे, और अगर किसी पर जुल्म किया तो इससे मुआफ़ी तलब करे। अहादीस की रोशनी में तौबा की क्या अहमियत है ये बयान करें। चंद अहादीस आपने नोट करनी है, बाद में इंशाल्लाह आपके ये सारी चीज़ें काम आएंगी। अब होमवर्क की रोशनी में देखते हैं। आप देखिए कि तौबा क्या थी, ग्यारहवां पारा तौबा की रोशनी में किया। और तौबा क्या होती है उसको हम मुख्तलिफ स्लाइड्स की सूरत में देखते हैं। सबसे पहली बात तो आप देखिए कि तौबा क्या है, अल्लाह की तरफ पलट आना। आज भी दुनिया में जब माएँ अपने बच्चों से नाराज़ होती हैं ना, कहती हैं मैं तुमसे नहीं बोलूँगी, ये अलग बात है, थोड़ी देर बाद फिर मजबूर होकर बोल पड़ती हैं। तो बंदा तौबा करके असल में अल्लाह को ये एहसास दिलाता है कि अल्लाह मैं आपकी तरफ पलट आया हूँ। और ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड, आई एम सॉरी, कितना आम जुमला, आई एम सॉरी। सॉरी लिख लीजिए अपने लिए, हम दूसरों को बड़ा प्यार से कहते हैं आई एम सॉरी सॉरी। अल्लाह को आई एम सॉरी कहने में कुछ शरायत है। नंबर एक, रिग्रेट द सिन, अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी। दूसरी बात है, इसको छोड़ दीजिए। फिर इसी तरह सिंसियर इंटेंशन रखिए कि आपने ये काम करना है। और इसी तरह से आप देखिए कि तौबा को डिले नहीं करना चाहिए। फिर इसी तरह आप देखिए, झूठी कस्मों की बात थी इस पारे के अंदर, कैसे मुनाफिक झूठी कस्में खाते हैं। फिर हमने दसवें पारे में साबिकून अलवलून की बात की, आगे पढ़ने वाले अल्लाह हमें इन्हीं में कर दे। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना, बेशक अल्लाह ने ख़रीद ली मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल, क्योंकि बदले में उनके लिए जन्नत है। कौन कौन जन्नत का तलबगार है, कौन कौन ख़रीदना भी चाहता है? तलबगार तो बड़े होते हैं, पैसे किसकी जेब में जन्नत ख़रीदने के? ख़रीदना चाहते हैं जन्नत? आज दुनिया में इसका क्या तरीका है? ख़र्च करना है और इल्म हासिल करना है, ठीक है। अल्लाह ताला हमारे लिए इसको आसान करे। जन्नत को लेने के लिए खून भी बहाना पड़ता है, हमें तो अल्लाह ना करे वो बहाना पड़े, लेकिन पसीना तो बहा सकते हैं ना, गर्मी तो बहा सकते हैं। आप देखिए हमारे पास कितनी फालतू चीज़ें पड़ी रहती हैं, और एक चीज़ होती है हम एक और ख़रीद लेते हैं, चलो ज़रूरत की ही सही, लेकिन जन्नत भी ख़रीदनी पड़ेगी। इंशाल्लाह हम सब जन्नत ख़रीदने के लिए तैयार हैं। डू बिज़नेस विद अल्लाह, कितने लोग हैं जो अल्लाह के साथ बिज़नेस करना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, उससे बड़ा है कोई वो मनऊफा बियहदिही मिन अल्लाह, अल्लाह से भी कोई ज़्यादा है वादे पूरे करने वाला? किस किस को यकीन है कि आज मैं अल्लाह के रास्ते में कुछ करूँगी कल मुझे फ़ायदा होगा? अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए अल्लाह ताला आसान करे। नेक्स्ट देखिएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, सूरह तौबा का पैगाम, सच्चों का साथ दो, ये सच तुम्हें उस सच्ची जगह पे ले जाएगा जिसका ज़िक्र हम आगे पढ़ेंगे, इन द मलिक इन मुक्तदर। सच्ची महफिलें होंगी जहाँ अल्लाह भी होंगे, फरिश्ते भी होंगे। किस किस का दिल करता है ऐसी महफिल में आप भी इन्वाइटेड हों जहाँ फरिश्ते भी हों और अल्लाह भी हों, और हम अल्लाह से इतनी बातें पूछे, अल्लाह इतनी गर्मी क्यों पैदा की आपने, हैं, और इतना ये और इतना ये कुछ। याद रखिए कि वो दिन गोल में शामिल कर लीजिए जिस दिन अल्लाह से मुलाकात करनी है, उसके लिए यहाँ जो कीमत देनी पड़े दे दीजिए। जान माल तो बहुत सस्ती बात है, उसके लिए तो सब कुछ देकर भी बंदा अगर अपने आप को वहाँ पर ले जाए तो बड़ी बात है। फिर नेक्स्ट देखिए, फ़ैन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। कोशिश करना फ़र्ज़ है लेकिन तवक्कुल अल्लाह पे, वही होगा जिस चीज़ का तवक्कुल, जिस चीज़ का सिरा हम अल्लाह ताला के साथ जोड़ेंगे। फिर आप देखिए सूरह यूनुस शुरू हुई थी, कदम सिदकिन, सच्चाई का कदम, ऑनरेबल स्टेटस। दुनिया में हम सब स्टेटस कॉन्शियस होते हैं, हमें किसी न किसी लिहाज से अच्छा स्टेटस चाहिए होता है। जन्नत का आला स्टेटस कदम सिदकिन है। जैसे आपको कहा जाए आप इधर से उठ कर आइए, ऊपर स्टेज पे बैठ जाएं, एक ऑनर फील होती है ना, बिल्कुल इसी तरह याद रखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला जन्नत में किस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारे सामने ले आएंगे। जो दुनिया में छोटे छोटे कदम उठाए होंगे नेकियों की तरफ आने में, ये वहाँ इंशाल्लाह सच्चाई के मुकाम बन जाएंगे हमारे लिए। फिर इसी तरह हमने आगे देखा था कि बाइज़ा मसल इंसान दर्रु दान अली जम भी ही अवकादन अवकाई मन फलम माँ कशफ नान हदुर रहु मर्र काम यद उना इला दुर्र मसहु कज़ालिक ज़ुज्जिन लिल मुसरिफीन मा कानू यअमलून। जब इंसान को कुछ ज़र्र पहुँचता है तो उठते बैठते लेटते अल्लाह को ही पुकारता है, ऐसे ही होता है ना, और जब अल्लाह वो दुख दूर कर देता वो बीमारी दूर हो जाती है, ऐसे गुजर जाता है जैसे कभी उसने कभी पुकारा ही नहीं था रब को। कहते हैं ना अब तो को लगता है हमसे कोई काम ही नहीं है तुम्हें, अल्लाह हमें दुख और सुख में अपने साथ जोड़ ले। और फिर कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरु मिम्मा यजमऊन। आपको तो ये आयत कहाँ लिखी हुई है, सूरह यूनुस 57-58। ये आपके इस इदारे नूरुल कुरान का मेन मोटो आया था, कद जातकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम। कुरान मौइज़ा भी है, हुदन भी है, बुशरा भी है। जिसको ये कुरान मिल जाए उसको खुशियाँ मनानी चाहिए। आप खुश हैं इस कुरान को मिलने पे? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नेक्स्ट, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह सीने के राजों को जानने वाला है। और इसी तरह से एक सच्चे मोमिन की ज़िंदगी क्या होती है, मीनिंगफुल लाइफ होती है। उसके अंदर से रोशनी की शुआएं निकलती हैं। तो ये था आपका पारा नंबर 11। पारा नंबर 11 में हमने तौबा देखी,